मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 23 नवंबर 2016 है और आज के इस afeias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के साथ ही स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन 8 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं जयसराम चोपड़ा, आप नागपुर नागौर राजस्थान से हैं, सोनल कहालकर, आप भी आप नागपुर महाराष्ट्र से हैं, स्वेना सराफ रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, कैलाश सैनी बदरपुर न्यू दिल्ली से हैं, रोहित कुमार रांची झारखंड से हैं, सोनम बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, अजय जायसवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं और मुदित पांडे भोपाल से हैं। तो जयसराम, सोनल, स्वेना, कैलाश, रोहित, सोनम, अजय और मुदित, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीच बीच में जैसा कि मैं रजिस्ट्रेशन कराने वाले अपने स्टूडेंट को बताता हूं, उनका आह्वान करता हूं, मित्रों हम लोगों के मिलने के दिन एक एक करके लगातार कम होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी वह दिन आएगा कि जिनके मैं अभी नाम ऑडियो के जरिए ले रहा हूं, केवल लिखित रूप में उन्हें देख रहा हूं, एक दिन होगा जबकि मैं प्रत्यक्ष आप सबको देखूंगा, आप लोगों से मिलूंगा और फिर लगातार 90 घंटों से भी अधिक वक्त आप लोगों के साथ गुजारने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। मित्रों, बस मेरी एक अर्ज है, वो अर्ज ये कि ये जो 90 घंटे होंगे, मान करके चलिए कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत अमूल्य घंटे हो सकते हैं, इसका एक एक पल आपके लिए अमूल्य हो सकता है, बशर्ते कि आप उसे मूल्यवान बनाना चाहें। मैं आपके मूल्यवान बनाने की बात मित्रों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, देने वाला चाहे कितना भी कुछ देता रहे लेकिन यदि लेने वाला सतर्क नहीं है और सही मायने में उसकी झोली फैली हुई नहीं है तो बात बनती नहीं है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खुद को खाली करके आना है और कुछ लेकर नहीं आना है। लेकर आने की जरूरत नहीं है, आप खाली बनकर आइए, खाली पात्र बनकर आइए, आपको तो यहां से लेकर जाना है। मेरे कहने का मतलब है कि प्लीज मानसिक चेतना, जो हमारी चेतना होती है, जो एक मानसिक वातावरण होता है, उसको बदलने की कोशिश कीजिए। बदलने की कोशिश करने का मतलब है अपने अंदर रिसीविंग की पात्रता लाइए कि मुझे जानना है, मुझे समझना है। यहां तक सोचिए कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मुझे जानना है। जितनी ज्यादा आप अपने अंदर इस पात्रता को लाते चले जाएंगे, आपकी ग्रहण शक्ति, जिसे आप कह लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज्यादा गहरा होता जाएगा, उतना ज्यादा फोर्सफुल होता जाएगा और फिर आप देखेंगे कि कैसे यहां जो इतने घंटे आप गुजारेंगे वो चीजें आपके दिमाग में लगातार तेजी के साथ आ आ करके आपके अंदर समाहित होती जा रही हैं और आप आए तो अपने को खाली करके थे लेकिन अब आप अपने को कितना भरा पूरा महसूस कर रहे हैं जबकि आप यहां से लौट रहे हैं। और फिर आप सबके लिए जीवन का इतना बड़ा खजाना होगा मित्रों, शायद उसके बारे में मैं अभी बताने की स्थिति में भी नहीं हूं। केवल एक मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, हमारे फिफ्थ बैच की स्टूडेंट रही हैं कुसुम सुथार, उन्होंने आप लोगों के लिए एक मेल भेजा है, खासकर उनके लिए, सिक्स्थ बैच के लिए। उन्होंने लिखना ही है कि सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट के लिए मैं ये भेज रही हूं, उनका अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, मैं ये बात सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं, आप ये मत समझिए कि मैं आपको कोई बरगला रहा हूं या कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपका विश्वास बढ़ सके। मित्रों, उन्होंने लिखा है 15 दिन के अपने अनुभवों के बारे में। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है, यह क्लास आईएएस की तैयारी कैसा करना है के साथ साथ जीवन जीना सिखाती है। सेकेंड पॉइंट दिया है कि स्कूल कॉलेज एंड अदर क्लासेस के अनुभव के बाद महसूस हुआ कि सब जगह तो मित्रों से कॉम्पिटिशन रहता था लेकिन इस क्लास ने एक साथ चलना सिखा दिया। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया है आप लोगों को एड्रेस करते हुए कि दोस्तों आप वहां जाकर जो महसूस करेंगे उसको बयां करने के लिए शब्द नहीं होंगे, आप वहां का एक एक पल जीना, अंतिम दिन भी भगवान से एक ही प्रार्थना होती है कि एक दिन और दे दो। ये उन्होंने लिखा है दोस्तों, जब आप क्लास में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई मंदिर में आए हो, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है वहां पर। मित्रों ये उन्होंने बातें कही हैं, जो जिस एनर्जी की बात कह रहे हैं, जिस वातावरण की बात कह रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, उन सब के लिए आप जिम्मेदार होते हैं। वो आपके द्वारा बनाई गई एनर्जी होती है, आपके द्वारा तैयार किया गया वातावरण होता है और ये सब कुछ सिर्फ मानसिकता की देन होती है। तो प्लीज आप सब उस मानसिकता को लेकर यहां आए और उसकी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दें और उसका एक जो तैयारी करने का तरीका हो सकता है वह यह कि प्लीज लाइफ मैनेजमेंट को आप सब जरूर सुने, स्पेशली जो स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मित्रों इसके बाद अब मैं आता हूं अपने रूटीन पर। पहले मैं बधाई देना चाहूंगा ओम विश्नोई को जो बाड़मेर राजस्थान से हैं और हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने अभी सीबीएसई का जो यूजीसी नेट एग्जाम था वो पूरी तरह से क्वालिफाई कर लिया है। तो ओम विश्नोई इसके लिए अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। दोस्तों अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों मैंने इसलिए भी थोड़ा सा अधिक समय लिया है क्योंकि न्यूज एनालिसिस के लिए आज कुछ विशेष है नहीं। आप लोगों ने एआईआर की न्यूज सुनी होगी, ज्यादातर न्यूज तो नोटबंदी के मामले को ही लेकर के थी। अब इस पर स्थितियां चल रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं, सरकार स्थितियों की समीक्षा करती जा रही है, जरूरत के हिसाब से नई नई योजनाएं आप देख रहे हैं कि चीजें आती चली जा रही हैं, तो ये तो अभी एक लंबा सिलसिला है जो चलेगा ही। जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर मुझे लगता है जो सिविल सर्विस के एग्जाम के लिहाज से है कल की एआईआर न्यूज में दोस्तों, वह है एम बाल मुरली कृष्णन के निधन की खबर। तो मित्रों सबसे पहले तो मैं आप सभी की ओर से, अपनी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से, उन महान संगीतकार की आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपनी शरण में, अपने शरण में जगह दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनसे जुड़े हुए लोगों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। मित्रों एम बाल मुरली कृष्णन जी के बारे में आज अखबारों में काफी कुछ आया है। मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि आपको उनके बारे में जानना चाहिए। ये बहुत ही महान संगीतकार थे और बहुत पहले एक एड आया करता था दूरदर्शन पर, मिले सुर मेरा तुम्हारा, कुछ इस तरह के थे जिसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग गीतकारों ने, संगीतकारों ने गाया था। उसमें ये भी थे जो मिले सुर मेरा तुम्हारा गाते थे, समुद्र के किनारे का तट, वो मुझे अभी वो दृश्य याद आ रहा है। बहुत ही महान संगीतकार रहे हैं तो इनके बारे में व्यक्तिगत इनकी जो उपलब्धियां रही हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। सिविल सर्विस के जहां तक का सवाल है फ्रेंड्स, वो कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार रहे हैं और आपको मालूम है कि आपका जो सिविल सर्विस मेंस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें कला एक सिलेबस का बिंदु है और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर आप पीछे के कुछ सालों के क्वेश्चंस उठा करके देखें तो आप देखेंगे कि कभी क्लासिकल म्यूजिक पर पूछ लिया जाता है, कभी नृत्य पर पूछ लिया जाता है, कभी आर्किटेक्ट पर पूछ लिया जाता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहता ही है। भले ही हमें वो क्वेश्चन सिलेबस या किताब से दिखाई दे लेकिन उसका जो बेस होता है अगर आप बहुत ही माइन्यूटली देखेंगे तो उसका बेस कोई ना कोई करेंट अफेयर होता ही है। होता यह दो फ्रेंड्स की जैसे मान लीजिए कि आप अभी सिविल सर्विस की तैयारी करना आप शुरू करते हैं और अभी दिसंबर में आपको पेपर पढ़ने को मेंस के पेपर मिलेंगे तो उसमें आप एक कला के बारे में एक प्रश्न पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल ये होगा कि इससे आप करंट अफेयर से जोड़ सकें। मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल के करंट अफेयर्स में से कहीं से उसका जुड़ाव होगा और आपने उस दौर को देखा नहीं है। देखा होगा तो ध्यान नहीं है, सतर्क नहीं थे, आप इसलिए नहीं जोड़ पाएंगे। अदरवाइज वो किसी न किसी मामले में करंट अफेयर से जुड़ा ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो देखिए, चूंकि दिसंबर में एग्जाम होने ही है तो इस साल के बारे में तो सोचना ही बेकार है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का, चाहे वो प्री का एग्जाम हो या मेंस का हो, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कर्नाटक संगीत पर हो सकता है कि कुछ पूछ लिया जाए, और यदि ऐसा होता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि आप कर्नाटक संगीत पर एक छोटा सा नोट, एक इन्फॉर्मेटिव, एक परिचयात्मक जानकारी हासिल कर लें। थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा तो फ्रेंड्स, कि जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बेसिकली उसके दो पार्ट हम लेके चलते हैं, एक तो हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं और दूसरा है कर्नाटक संगीत। ये दोनों के दोनों क्लासिकल म्यूजिक हैं। शास्त्रीय कहने का मतलब है जिसमें डिसिप्लिन बहुत है, ग्रामर का डिसिप्लिन बहुत है। फिल्मों के संगीत को आप देखिए, हम कहते हैं सुगम संगीत। सुगम का मतलब है जो आसानी से जाना जा सके, गम का मतलब होता है पहुंचना, जिसे जहां आप आसानी से पहुंच सके। तो यही होता है कि जो देखिए फिल्मी जो म्यूजिक होते हैं, फिल्मी जो गीत होते हैं, हर आदमी गुनगुना रहा है, हर आदमी सुन रहा है, हर आदमी उसका आनंद ले रहा है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक का आनंद हर कोई नहीं ले सकता। गुनगुना तो बहुत ही कम सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक होता ही वह है जो बहुत ही ज्यादा शास्त्रीयता पर आधारित है, ग्रामर पर आधारित है, रागों पर आधारित है, जिसमें बहुत ही कड़ा अनुशासन है। सुगम संगीत को तो आप अपने ढंग से ढालते जाइए, करते जाइए, जैसा भी चाहे वैसा उसका तोड़ मरोड़ उसको दीजिए। तो मित्रों, दो इसकी धाराएं हैं, एक तो हिंदुस्तानी संगीत है, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है, और दूसरा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत है। बट नेचुरल की जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ये उत्तर भारत का है, और कर्नाटक जो संगीत है वो दक्षिण भारत का है। ये दो मेन स्ट्रीम है, दो मेन धाराएं हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब जो हमारे देश का जो इतिहास रहा है, तो उत्तर भारत का जो शास्त्रीय संगीत रहा उस पर लगातार दूसरों के इन्फ्लुएंसेस रहे। सातवीं आठवीं शताब्दी से आप देखते हैं अरब, मुगल, टर्क, अफगान ये आने शुरू हो गए, तो भाषा का भी प्रभाव पड़ा, तुर्की, अरबी, तुर्की, इन सब भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा, और वहां की जो अपनी संगीत परंपरा थी उनका भी प्रभाव पड़ा। तो ये जो हिंदुस्तानी संगीत है, जो उत्तर भारत का संगीत है, इस पर बाहरी प्रभाव बहुत है, लेकिन जो कर्नाटक का संगीत है उस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। ये कह लीजिए कि विशुद्ध शास्त्रीय संगीत है, जो हमारा ओरिजिनल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक था, वो कर्नाटक संगीत में सुरक्षित है। सच पूछे तो कर्नाटक का मतलब ही होता है प्राचीन, पुराना, विशुद्ध, कह लीजिए प्योर। कर्नाटक का जो अर्थ निकलता है वो प्योर है, क्योंकि साउथ में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभाव इन संस्कृतियों का नहीं रहा है, तो वो आपको वहां की संस्कृति, भाषा, परंपरा, उन सब में भी दिखाई देगा। तो मित्रों, कर्नाटक संगीत, कर्नाटक शब्द से ऐसा लगता है कि केवल कर्नाटक तक ही प्रचलित होगा, कर्नाटक में ही होगा, ऐसा नहीं है। साउथ के जो स्पेशली जो चार स्टेट्स हैं, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, और आपका कर्नाटक तो है ही, इन सब में ये कर्नाटक संगीत बहुत पॉपुलर है और बहुत ही सम्मानित दृष्टि से इसके कलाकार देखे जाते हैं। वहां बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं और बड़े बड़े म्यूजिकल कंसर्ट होते हैं, और एम बाला मुरली कृष्णन उन्हीं में से एक थे। विदेश में, श्रीलंका में आपको कर्नाटक संगीत का एग्जिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि विदेश हम लोग, श्रीलंका हम लोग एक साल पहले ही गए थे, तो एक डेढ़ साल पहले, तो वहां जो श्रीलंका में जो कर्नाटक म्यूजिक है उसके आपको लोग दिखाई देंगे। कर्नाटक म्यूजिक की एक विशेषता यह है दोस्तों कि बेसिकली ये वोकल है। म्यूजिक कहते हैं तो हमको लगता है कि वाद्य यंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वोकल है, मतलब यहां तक कि अगर वाद्य यंत्रों से भी कुछ ध्वनि राग निकाले जा रहे हैं तो मतलब अपेक्षा यह होती है कि आप उसे गायन में तब्दील करेंगे। ये इसकी बहुत अपना कह लीजिए कि एक्सक्लूसिव इसकी स्पेशलिटी है। और वाद्य यंत्रों में दोस्तों, वही जो हमारे यहां भी बहुत उत्तर भारत में भी जो वाद्य यंत्र प्रचलित हैं वही कर्नाटक संगीत में भी यूज होते हैं। हाँ, कुछ बिल्कुल नए हैं जो उत्तर भारत में, जिन्हें बहुत ज्यादा स्थान नहीं मिला है। वाद्य यंत्रों में आपको मृदंग मिलेंगे, तंबूरा, घटम, कंजीरा, वीणा, विचित्र वीणा, बांसुरी, ये सारे वाद्य यंत्र वहां मिलेंगे। और साउथ में अब जो चेन्नई है, जो मद्रास, पहले का मद्रास है, वो अब इसका केंद्र बन गया है। तो मित्रों, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको कर्नाटक म्यूजिक के बारे में दी है और मैं चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ी सी और जानकारी हासिल करें। दोस्तों, AIR न्यूज के बारे में बस इतना ही। एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूंगा फ्रेंड्स, चाहे तो आप दिन में इस पर आज के दिन का इस्तेमाल, या अगर आप शाम को ये डेली ऑडियो सुनेंगे तो कल के दिन का इस्तेमाल इस पर कर सकते हैं। यूं कह लीजिए कि मैं आपको फूड फॉर थॉट प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो ये कि प्रधानमंत्री जी ने कल एक बात कही न्यूज में, उसका उल्लेख भी था कि मूल्यों का पालन करना आज सबसे बड़ा संकट होता जा रहा है। ये उन्होंने वाक्य कहा। ये सच पूछे तो बहुत ही रोमांचकारी वाक्य है, जिसे सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि जब आप लाइफ में जब वैल्यूज को लेकर के चलते हैं, वैल्यूज क्या है, चाहे वो मोरल वैल्यूज ले लीजिए, रिलीजियस वैल्यूज ले लीजिए, लीगल वैल्यूज ले लीजिए, ह्यूमैनिटी के वैल्यूज ले लीजिए, जीवन मूल्य जिसे आप कहते हैं, ये फोर्थ पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है, जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर है, और ऐसे का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो आज अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से, अच्छे तरीके से, यूं कह लीजिए कि नैतिकता के साथ अगर जीवन जीना चाहे, तो बहुत कठिन होता जा रहा है। ये खासकर प्रधानमंत्री जी ने अभी काले धन को लेकर जो आलोचना हो रही है और विपक्ष ने जिस तरह का रवैया दिखाया है, उसके प्रति उनका कमेंट है, क्योंकि विपक्ष चाहे जितनी भी आलोचना करे, ठीक, लोगों को परेशानी हो रही होनी ही थी, लेकिन जिस तरीके से वो आलोचना कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी का कहने का अर्थ कुछ इस तरीके का है कि भाई आलोचना क्यों हो रही है, मतलब हर कोई जानता है कि काला धन है, काला धन खत्म किया जाना चाहिए, तो जब काला धन खत्म किया जाना ही चाहिए तो उसके लिए दूसरा क्या उपाय हो सकता है, यही उपाय हो सकता है फिर उसकी जो शुरुआत की तकलीफें हैं वो उठानी ही पड़ेंगी, लेकिन उनके अंदर एक तरह से ये उनका दर्द इसमें इजहार हुआ है, व्यक्त हुआ है। आप कह सकते हैं कि मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और मुझे आज आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, शायद यही अभिव्यक्ति, यही ध्वनित हो रहा है इसमें कि मूल्यों का पालन सबसे बड़ा संकट होता जा रहा है। मित्रों, मुझे लगता है कि जब आप इस पर विचार करेंगे, इस पर पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे, कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, तो यह वाक्य आपके फोर्थ पेपर की तैयारी करने में आपकी बहुत मदद करेगा। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर पर चर्चा करने का वक्त तो नहीं है, लेकिन खासकर जो दो तीन जो टॉपिक है, मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक जनसत्ता का मराकस पर एडिटोरियल कमेंट है, जो मोरक्को की राजधानी में जो अभी सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, हिंदी में यह पहला एडिटोरियल कमेंट है जो लिखा गया है। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से हिंदू का एक आर्टिकल है, द बक स्टॉप विद द स्टेट्स, यानी कि जो लैंड एक्विजिशन के जो अलग अलग तरीके हैं, स्टेट वाइज कैसे डिफरेंट होने चाहिए, उस पर लिखा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज इसे भी पढ़िएगा। और ठीक इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, नाउ रिफॉर्म पॉलिटिकल फंड, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इन्हें जरूर पढ़िएगा। और बाकी जो दूसरे आर्टिकल्स हैं वो आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार, जरूरत के हिसाब अनुसार आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण, ईमेल के चरण पर। तो सबसे पहले तो मैं कुसुम सुथार मुंबई से जो हैं, हमारे स्टूडेंट रही हैं फिफ्थ बैच की, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका जो मेल था वो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, और कुसुम इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि तुमने जो कविता भेजी, वो बहुत ही खूबसूरत कविता है, बड़ी अच्छी कविता है, उसकी भावनाएं बहुत पवित्र और बहुत ऊंची हैं, इसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक इसी तरह से एक प्यारा मेल मिला है हनी सिंह का, जिनकी भाषा बहुत ही खूबसूरत है, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो हनी सिंह आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ के नाम हैं अभिषेक वर्धन सिंह, मगराज चौधरी बाड़मेर राजस्थान से, नरेंद्र सिंह लोधी जोधपुर राजस्थान से, निखिल देसाई, वीरेंद्र कुमार, योगेश कुमार साहू, प्रियंका कुमारी पटना से, काजल भारती आप भी पटना से, शुभम विश्नोई, दिव्य प्रकाश सिसोदिया, परमवीर प्रतीक, हर्षित राज, अर्जुन सूर्यवंशम गोरखपुर से, और ईशांक मौर्य गाजियाबाद से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।